सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल के सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
परम पूज्य बंदा श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य बंदा श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संत की जय।
हम सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार एक ही बात पे विचार कर रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन को और अच्छा बनाएं। हम रोज रोज अगर अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे तो एक दिन पूरी तरह से हमारा जीवन जैसा हम चाहते हैं, जितना अच्छा हम दूसरे से जीवन की अपेक्षा रखते हैं, वैसा ही जीवन हमारा भी हो जाए। जीवन के अच्छे होने का मायना क्या है? अपने स्वभाव को प्राप्त, अपनी परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करने। जीवन के अच्छे होने का सवाल ये नहीं है कि सुख सुविधा की सामग्री बहुत ज्यादा हमारे पास हो तो हमारा जीवन अच्छा कहलाएगा। ये तो बहुत सांसारिक सा सोच है कि जिसके पास बहुत अच्छी सुख सुविधा की सामग्री है उसका जीवन अच्छा है। पर हम किस तरह के जीवन को अच्छा जीवन मानते हैं? जिस जीवन में जितनी निराकुलता है, जिस जीवन में जितनी विशुद्धि है, जितनी निर्मलता है, वो जीवन उतना अच्छा है। तो हम रोज देखें कि हमारे जीवन में निराकुलता आई कि नहीं आई, हमारे जीवन में निर्मलता आई है कि नहीं आई है। जितनी जितनी निर्मलता, जितनी जितनी निराकुलता हमारे जीवन में आती जाए, समझे कि हमारा जीवन उतना अच्छा हो गया। आज गुस्सा करने के बहुत अवसर थे लेकिन मुझे गुस्सा ही नहीं आई। आज कितने अवसर थे जब मैं झूठ बोल करके और अपना काम निकाल सकता था, लेकिन आज मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं झूठ बोलूं, क्यों बोलूं व्यर्थ में। आज जो है सामान, कितने बार मौका आया कि मैं जिस चाहे का सामान उठा के रख लूं, कोई देखने वाला नहीं था। आज कितनी बार मौका आया कि दुकानदार होने की वजह से ग्राहक ने पैसे ज्यादा दे दिए, धोखे से चला भी गया, लेकिन हमने उसे बुला के कहा, भैया तुम ज्यादा पैसे दे गए, वापिस ले लो अपने, मुझे नहीं चाहिए। कितनी बार चोरी का अवसर आया, कितनी बार जो है और मुझे अपने जीवन में जो बुरी आदतें हैं उनको करने का अवसर आया, फिर भी मैंने नहीं करी। कितने अवसर आए मुझे अनावश्यक रूप से धन के संचय करने के, लेकिन आज मेरा मन अपनी सीमा में जितना मुझे आवश्यक है उतना ही रखने का हुआ। ऐसा होता है क्या हमारे मन में आता है एक क्षण के लिए भी? तब फिर हम समझ लें कि हाँ वास्तव में और हम अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। हम अपने जीवन को अपने कर्मों से अच्छा बनाते हैं। जो हम कर्म करते हैं वे कर्म भी हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, वर्तमान को भी, हमारे भविष्य को भी अच्छा बनाते हैं, और इतना ही नहीं वे पुराने हमारे जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उन बुराइयों को भी हटा देते हैं। इसी को हमने कर्म सिद्धांत की भाषा में समझा था कि जो कर्म हम बांधते हैं उन पे हमारा अधिकार है या उन पर हमारा वश है, जो कर्म हमारे बंधे हुए हैं उन पर भी हमारा वश है, नए बांधने वाले पर भी है, पुराने पर भी। और इतने ही नहीं, जब वे अपना फल देने आ जावे तब भी हमारा वश है कि हम जैसा चाहें वैसा उनके साथ व्यवहार करें। यही तीन बातें तो हैं, और हम इन तीन बातों को अलग अलग ढंग से समझते हुए कि हमारे जीवन में मेरे ख्याल से तो और बहुत सारी बातों के बीच अगर इतना भी याद रहे कि जब जब मेरे पाप का उदय आए तब कर्म तो मुझे पाप करने के लिए प्रेरित करेंगे लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। जब जब भी मुझे कषायें घेरें तब तब मैं उन कषायों के घेरे में नहीं आऊंगा, मैं उन कषायों के घेरे से अलहदा खड़ा हो जाऊंगा। जब जब मेरे जीवन में विषमताएं आए मैं उन विषमताओं को शांति से सहन करके समता परिणाम बनाए रखूंगा। हर्ष और विषाद के अवसर में भी मैं संतोष पूर्वक अपना जीवन जीऊंगा। कर्म सिद्धांत चाहे जिस तरह समझ लो, बातें कुल समझने की इतनी ही हैं। हम अगर अपने परिणाम भले रखते हैं तो हम निश्चिंत हो जाएं, जितने भी अशुभ कर्म हैं उनका ड्यूरेशन, उनकी पोटेंशियलिटी, स्थिति, ऋण भाग सब घट जाएंगे अपने आप। जो पहले बंधे थे उनके भी, जो नए बंधे थे उनकी भी स्थिति अनुभाग कम हो जाएगा, और जो शुभ कर्म हैं वे डोमिनेट हो जाएंगे, वे हमारे अंदर प्रबल हो जाएंगे। और शुभ कर्मों की प्रबलता में हम चाहें तो आसानी से फिर अपने आगे की यात्रा को आसान बना सकते। इतनी कुल बात है। एक शुभ कर्म ऐसा है तमाम शुभ कर्मों में, बताइए, जो कि अपने कल्याण के साथ प्राणी मात्र के कल्याण में निमित्त बनता है, वो शुभ कर्म कौन सा है? कोई पूछे कि 148 कर्म प्रकृतियों में कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जो कि अपने कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण में निमित्त बनता है? एकमात्र तीर्थंकर नाम कर्म है, जो कर्म की तरह आत्मा के साथ बंधन को प्राप्त होता है, जबकि बंधन भली चीज नहीं है, लेकिन एक कर्म ऐसा है जो कि बंधता है और जिससे जीव का स्वयं का कल्याण भी होता है और जिसके माध्यम से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। ऐसे उस तीर्थंकर नाम कर्म को बांधने वाले बहुत विरले जीव हैं। 160 जीव जो है 5 विदेह क्षेत्रों में तीर्थंकर की हैसियत से जन्म लेते हैं, और भरत और ऐरावत क्षेत्र में तो 5-5 जो भरत और ऐरावत हैं ऐसे 10 कर्म भूमियां, उनमें भी 24-24 तीर्थंकर ही जन्म लेते हैं। बहुत उंगलियों पे शलाका, उंगलियों पे गिनी जाने वाली इनकी संख्या है। क्या हम उसमें शामिल नहीं हो सकते? हम वैसे ना हो तो हम तो सोचते हैं कम से कम तीर्थंकर के परिवार ही में उत्पन्न हो जाए तो भी अपनों काम चल जाए। नहीं होएंगे तीर्थंकर तो नहीं होएंगे, इतनी अपनी गुंजाइश नहीं है, है? वे वैसे वाले देव हो जाएं जो तीर्थंकर के साथ में खेलने आते हैं, चलो उतने ही हो जाएं तो भी ठीक, अपना काम हो जाए। छोटी मोटी चीज नहीं है तीर्थंकर प्रकृति बांधना। इसलिए कह रहा हूं कि तीर्थंकर के साथ उनके जो मित्र बन के देवलोक खेलते होंगे उनका भी पार हो जाता है। सची इंद्र की जो जिसको पटरानी कहें, इंद्राणी कहें, वो सची अकेले बालक भगवान को मां के पास से उठा के और प्रसूति से ग्रह से बाहर इंद्र के हाथ में सौंप देती हैं। इतने मात्र से इतना भीषण पुण्य बंधता है कि अगले भाव में मनुष्य होकर के उसी भाव से मोक्ष चली जाती है। अद्भुत है। जिनका ठाट वाट जिनके बारे में क्या कहा जाए, ऐसे वो तीर्थंकर तीनों लोकों में जो है पूज्य पद को प्राप्त करने वाली ये तीर्थंकर प्रकृति। इसीलिए तो अपन लोगों में इतना महत्व है, 16 कारण भावनाएं। मां लोगों से पूछो क्या कर रहे, 16 कारण कर रहे, 16 कारण भावनाएं भाएं हम तो आगे जा करके हमारा कल्याण होगा। ना बन पाएंगे तीर्थंकर, तीर्थंकर के चरणों की धूल ही बन जाएंगे तो भी हमारा कल्याण। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से तीर्थंकर बनते हैं, हमने ये पिछले दिनों समझा। इतनी विशुद्धि कहाँ बनती है, हम और आपके नहीं होती, हमें तो प्राणी मात्र के कल्याण का विचार तक नहीं आता है, अपने अपने लोगों के कल्याण का विचार आ जाता है, या ज्यादा होगा तो अपने ही कल्याण का विचार आ जाएगा, वो भी बहुत बिरले लोगों को आता है। लेकिन अपने कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, ये विशुद्धि कैसे होती हो? सच्ची में ऐसी नहीं अकेली वाणी वाणी में नहीं, भीतर से ऐसी तो कोई भी कर ले, हमारी तो भावना है प्राणी मात्र को कल्याण हो गए, और फिर बाद में प्राणी मात्र में से कौन अपने कल्याण की पूछन लगे तो कहो गुस्सा आ जाए कि रो तुम्हारे बस को नहीं है, तुमसे नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना अंतरंग से होना बहुत कठिन, कहना बहुत आसान है। वो विशुद्धि कहाँ होगी? वो विशुद्धि किसी केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में बैठ करके उनके चरणों में, और जिसकी दृष्टि निर्मल है, जिसका श्रद्धान मजबूत है उसको ही होगी, ढुलमुल श्रद्धान वाले को नहीं होगी। हम आपसे श्रद्धान के बारे में जब जब भी कहते हैं तो हमें कोई ना कोई घटना याद आ जाती है। आज अपन तीसरे नंबर की भावना भाएंगे, सील व्रतेषु अनति चारो, यही आया ना, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, सील व्रतेषु अनति चारो, सील और व्रतों का निरतिचार पालन करना। अतिचार के मायने हैं दोष और निरतिचार के मायने हैं निर्दोष, जैसा कहा है वैसा ही पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे ज्ञान के साथ। हाँ, अज्ञान पूर्वक व्रत नियम का पालन करने से कोई लाभ नहीं होता, ध्यान रखना। अश्रद्धा पूर्वक व्रत नियम का पालन करने से भी कोई लाभ नहीं होता। यहां पर निरतिचार कह रहे हैं पूरी श्रद्धा और पूरे ज्ञान के साथ व्रत नियम का पालन करना, तब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति बनती है। तीर्थंकर प्रकृति एकमात्र 16 भावनाओं में से एक एक भावना से ही बन सकती, 16 ही जरूरी नहीं है भैया, क्योंकि एक में ही 16 समाही हैं अगर देखा जाए तो। जिसकी दर्शन विशुद्धि होगी उसके 15 अपने आप हो जाएंगे, जिसके विनय संपन्नता होगी उसके बाकी 15 अपने आप हो जाएंगे। अगर अपन थोड़ा सा विचार करें, देखो अच्छा, शील व्रतेषु अनति चारो, जिसको आचार्य श्री ने अपने उसमें प्रवचन में कहा सुशीलता, भला शील है, शील के मायने होता स्वभाव, जो अपने स्वभाव में रहता है, और व्रत के मायने क्या है, पापों से निवृत्ति, हिंसा व्रतस्तेय ब्रह्म परिग्रह भ्यो विरतिर व्रतम, इतनी अच्छी परिभाषा व्रत की है, पांचों पापों से बचने का नाम ही व्रत है, और अपने आत्म स्वभाव में लीन रहने का नाम शील है। इन दोनों चीजों को जो अपने जीवन में अंगीकार कर लेता है वो व्यक्ति, उसके 15 बाकी सब भावनाएं, क्योंकि शील का पालन और व्रत का पालन बिना श्रद्धा के तो होगा नहीं, बिना निर्मलता के तो होगा नहीं, तो दर्शन विशुद्धि आ गई। और जब शील का स्वयं पालन करेंगे तो चारित्र की विनय हो गई, और श्रद्धान के साथ किया है तो दर्शन की विनय, ज्ञान पूर्वक किया है ज्ञान की विनय, शील और व्रत का पालन करने वाला तपस्या करेगा तपस्या की विनय हो गई, तप की विनय हो गई, उपचार विनय तो करेगा, विनय संपन्नता हो गई कि नहीं हो गई, दोनों भावनाएं वो भी उसी में आ गई। ऐसा अगर घटाएं तो सारी बातें एक ही भावना में आ जाती हैं, इसलिए एक एक भावना कीमती है, 16 ही हो ऐसा नहीं है। हम आपसे श्रद्धा की बात कह रहे थे कि सील और व्रत का पालन निरतिचार करना है, तो निरतिचार के मायने हैं पूरे विवेक के साथ करना, पूरी श्रद्धा के साथ करना, और इतने ही नहीं कषायों की मंदता के साथ करना, ये कंडीशन लगी हुई है। त्यागी व्रति की कषाय मंद न होवे तो निरंतर उसके व्रतों में तो दोष लगता ही है। अन्य जीवों के भी व्रत नियम संयम करने की भावना नहीं होती, जो सबसे बड़ा नुकसान है व्रति के द्वारा होने वाला। ध्यान रखना, अपना नुकसान तो व्रति का हो ही रहा है अगर वो निर्दोष पालन नहीं करेगा व्रतों का, दूसरे का भी अकल्याण होता देखने वाले का कि भैया देख लो हमने खुद एक दिन ऐसा जब देखा था तो हमको बहुत संकोच लगा था। कैसा, दो प्रतिमा लें और गाली ऐसी दे रहे कि बेशब्द अपने मुंह से अपन को कहने में शर्म आएगी, ऐसा देखा। तो दो प्रतिमा धारण करके भी, व्रतों को अंगीकार करके भी यदि कषाय मंद ने हुई भैया, तो फिर वो व्रत तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त न बन सकेंगे। इसलिए सभी तागी व्रतियों को होती हो, सभी सम्यक दृष्टियों को तीर्थंकर प्रकृति बंधे सभी को, ऐसा नहीं है। जो निर्दोष रूप से पालन, निर्दोषता के मायने क्या, मैं सोचता रहा कि निर्दोष के मायने क्या, पूरी श्रद्धा, पूरे विवेक और कषाय की मंदता, ये तीन बातें तो होनी ही चाहिए। श्रद्धा कैसी, निर्दोष श्रद्धा कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा होती होगी। जैनेन्द्र कुमार ने अपना संस्मरण लिखा, जानते जैनेन्द्र कुमार को, बहुत थोड़े लोग जानते होंगे। उनने अपने नाम के आगे जैन नहीं लिखो जिंदगी भर, 11 साल की उम्र में उनकी माँ नहीं रही थी तो वो महिला उसमें आश्रम में थी महावीर जी के, तो उनके ऊपर कोई ने और कुछ चोरी वगैरह का दोष लगा दिया था जिससे उनके परिणाम संकलेश हो करके मर गई थी वो। तो जैनेन्द्र ने सौगंध खाई थी अर्थी पर कि अब अपने अपने नाम के साथ जैन नहीं लगाऊंगा, जैनियों ने हमारी माँ को कोई मदद नहीं करी। और फिर उसके बाद हमने एक घटना आपको और सुनाई थी उनके जीवन की, नमोकार कब पड़ा था उनने, जब बहुत बीमार हुए थे, नहीं तो नास्तिक हो गए थे बीच के समय में। भैया ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति के साथ मैं इसलिए ये आपसे कह रहा हूँ कि साधर्मी के प्रति व्यवहार करने से पहले देख लेना कि वो धर्म से च्युत तो नहीं हो जाएगा आपके व्यवहार से, ऐसा हो जाता है। श्रद्धा बहुत मुश्किल से बनती है, अश्रद्धा होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। ज्यादा देर क्या, एट द मूवमेंट तुरंत श्रद्धा टूट जाती है, क्षण भर के अंदर हमारे व्यवहार से टूट सकती है। इसलिए वो अपने संस्मरण में लिखते हैं कि हम एक बार राम कथा हो रही थी, रामायण बच रही थी, उसमें गए, सो रामायण दिन भर सुनी, बड़ा आनंद आया। शाम को लौट करके घर आए तो बाहर जो एक छोटे से बगीचा लगा रखा था, जैसे लोग घर के बाहर थोड़ी सी बागवानी नहीं कर लेते हैं, उसी में एक कुर्सी रख करके बैठ गए। वहीं पर उनके दोनों बच्चे, बिटिया और बेटा, दोनों खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, घर बना रहे थे। वो अपना अपना रेत पड़ी थी उसमें घर बना रहे थे, घर घूला जिसको अपन कहते, रेत में पांव फंसाओ और थप थोड़ दियो खो और बस निकाल दो पांव सो घर बन गो। उन्होंने कहा आप बनाते रहो जिंदगी लग जाए आपको, उनको तो फौरन बन जाते, एक मिनट नहीं लगता उनको, रेत पर चाहिए, फर्स्ट क्लास बना दिया। फिर उनने कहा कि अच्छा तुमने, तुम्हारा रसोई घर कहाँ है। उनने कहा ये तो गड़बड़ हो गई मामला, अभी बनाते हैं। सो ढूंढ के लाए एक ठो सीख, सुबह सीख जहां लगाई के लज्जा हो गई चिमनी और जो बन गया रसोई घर। होते कहा दरवाजा बन गया, खिड़कियां बन गई, बढ़िया से बढ़िया। अब लेकिन कॉम्पिटिशन तो सबके बीच में है, बड़े छोटों से लेके धर्मात्माओं के बीच तक में है, को बचो आर्ट कॉम्पिटिशन से, तो उनके बीच में भी। अब उसने भैया ने पहले शुरू किया, भैया ही पहले शुरू करता, पुरुष का अहंकार थोड़ा ज्यादा ही रहता, समर्थता नहीं, खुद से नहीं समर्थ, दूसरों का समार पे है अहंकार, खुद ही से नहीं समर्थ अहंकार दा विकल, तुमसे अच्छो बनो हम आओ। क्या हुई ये बनो हुई है तुमसे अच्छो, आपका अब लड़ने हुए तो क्या है कि नहीं तुमसे हम आओ अच्छो। बिटिया ने कुछ नहीं कहा। अब फिर थोड़ी देर में उसने टोका, कैसे तुमसे हमारा बड़ा भी है। उसने कहा देखो बड़े अड़े की बात न करो, अच्छी की करो तो ठीक है, बड़ो तो हमारी रो है, बड़ा तो हमने बनाया घर, अगर इनको दूसरे अर्थों में भी लें तो घर पुरुष के बस का नहीं है, घर तो मां ही बनाती है। मकान बना सकता है पुरुष, घर और मकान में बहुत फर्क है। ईंट चूने से बनने वाला मकान और जो घर के जो भीतर आत्मीयता होती है उससे बनता है घर, वो बिल्कुल अलग, वो दिखता नहीं है, ये वाला दिखता है। उसने कहा हमारा बड़ा है, बिटिया ने कहा। भैया फिर बोला कि देख बहन मेरा बड़ा है। अच्छा तुम्हारा कितना बड़ा है? हमारा इतना बड़ा। अब शुरू हो गया खेल, इतना बड़ा। उन्होंने कहा हमारा और इतना बड़ा। अब वो जितना है उतना उनके समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सा तो है, फिर भी कह रहा हमारा इतना बड़ा। उन्होंने कहा इतना बड़ा। उनने और ज्यादा हाथ फैलाए जितने फैला सकते, तब छोटे छोटे हाथ थे, पूरा इतना बड़ा। अब जो है उसके समझ में नहीं आया कि कितना बड़ा कहें। अब सब जितनी चीजें हो सकती थी सबकी, हमारा उतना बड़ा। उन्होंने कहा हमारा और उससे भी उतना बड़ा। फिर अब बिटिया को कुछ समझ में नहीं आया तो कहती कि हमारा रामचंद्र जी बराबर बड़ा। अब बताओ आप श्रद्धा देखो, जब सारी चीजें हार गई तो क्या हमारा रामचंद्र जी जितना बड़ा है घर? तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आया तो वो कहता है कि हमारा दो रामचंद्र जी बराबर बड़ा। अब तो हंसने की बारी थी। जैनेन्द्र कुमार कह रहे हैं कि पूरी राम कथा सुन के आया हूं और ये बच्चों की राम कथा देख रहा हूं और सुन रहा हूं। और बिटिया तुरंत बोलती है कि झूठ, दादा से पूछ लो, दादा से पूछ लो, रामचंद्र जी तो एक ही होते हैं, भगवान तो एक ही हैं, तुम ये दो कह रहे हो, बिल्कुल झूठी बात है। तब जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि मुझे तो जो जितनी रामायण सुन के आए थे वो हमें नहीं समझ में आई, जी समझ में आई कि हाँ बच्चों के मन में भी ये है कि सबसे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़े भगवान हैं। यह जो भावना है वो है वास्तव में श्रद्धा। अभी तो हम छोटी छोटी चीजें करके, जरा जरा से काम करके अपने को ही बहुत बड़ा मान लेते हैं, भूल जाते हैं कि कौन बड़ा है। सारी श्रद्धा एक तरफ रह जाती। अगर वाकई में हमारी श्रद्धा है तो हम यही कहें ना कि हमने क्या करा, महान तो वे हैं जिन्होंने कि व्रत नियम का पालन करके अपने जीवन का कल्याण कर लिया, हम क्या व्रत नियम करेंगे, हम क्या, हमारा क्या ज्ञान है, हमारी क्या श्रद्धा है। अगर देखना है तो वहां जाकर के देखो, फिर हमारे अंदर अपने शील व्रत इत्यादि के पालन का अहंकार नहीं आएगा, कषाय नहीं भड़केगी, श्रद्धा बनी रहेगी, विवेक बना रहेगा। बस इतनी सी ही बात है, व्रत और शील का निरति और शील दोनों के बारे में अपन खूब समझ चुके हैं। और अगर एक शब्द में कोई कहे कि इसको आप डिफाइन करिएगा, क्योंकि व्रतों से और शील से दोनों से आदमी को बहुत डर लगता है। शील के मायने हैं स्वभाव, मैं राग द्वेष करता हूं ये मेरा स्वभाव नहीं है, और जिन क्षणों में मैं राग द्वेष नहीं करता हूं वो मेरे शील के क्षण है, मैं अपनी दृष्टि को खराब नहीं करता हूं वो मेरा शील है, और ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है। अवसर तो बहुत आते हैं दृष्टि को बिगाड़ने के, लेकिन मैं अपनी दृष्टि बिगड़ने नहीं देता, सबके प्रति जो है भली दृष्टि रखता हूं, वही मेरा शील। हो सकता है मैंने नियम न लिया, हमने तो नियम लेने वालों को भी जो है दृष्टि खराब करते देखा है। बिना नियम के भी अगर हमारे अंदर दृष्टि की निर्मलता है तो हमारा शील है। और व्रत हमारा मन पाप की तरफ जाते ही नहीं, कषायों की तरफ जाते नहीं। इतना आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा शील है आत्मनियंत्रण। ये सारे उसी के लिए हैं। जितने भी शील का पालन किया जाता है, सात शील व्रत कह लो, तीन गुण व्रत, चार शिक्षा व्रत, सब मिला दो तो सात शील व्रत हैं और पांच अणुव्रत हैं, ऐसे 12 व्रत, इनका भी निरतिचार पालन करना। और मुनि महाराज की अपेक्षा से ले लो तो 5 महाव्रत, और अंतरंग में जो वीतरागता है, जो स्वभाव की अनुभूति है, वही उनका शील व्रत है। अगर देखा जाए तो एक ही चीज में सिमट गई सारी चीज, आत्मनियंत्रण करना, आत्म संतुलन बनाए रखना, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ कंट्रोल, हमारा अंकुश हमारे हाथ से हमने अपने ऊपर रख लिया, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, इन सब को हमने अपने नियंत्रण में रख लिया है। क्या करना क्या नहीं करना, या कि दूसरी भाषा में ले लें, खाने पीने को अपन लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, तो क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्यों खाना, ऐसा कर लो। इतने प्रश्न पूछो तो संतुलन हो जाएगा, या करने के बारे में पूछ लें, अपनी इंद्रियों और मन को किस तरह से दिशा देना, किस दिशा में ले जाना। वो तो हर एक दिशा में जाने को तैयार हैं, पर हमारा अपना विवेक है कि उसे हम क्या दिशा देवें। जैसे कि हम कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो पहले अपनी दिशा निर्धारित कर लेते हैं, उसके बिना यात्रा नहीं होती भैया। ऐसे ही जो है, अगर हम अपने जीवन की एक बहुत अच्छी और सुखद यात्रा करना चाह रहे हैं, एक अच्छी ऊंचाई पर हम पहुंचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी दिशा निर्धारित करें। और वो दिशा कैसे निर्धारित होगी, इसी आत्म नियंत्रण के द्वारा ही दिशा निर्धारित, आत्म संतुलन होना, हर चीज में संतुलन, कितना बोलना, हाँ कितना खाना, जैसे ऐसे ही सब में संतुलन करना सब है। कोई भी चीज संसार की ऐसी नहीं रोक दी जाएगी कि ये नहीं करेंगे, सब करें, लेकिन कितना, एक कोई लिमिट है या नहीं है, मर्यादित है जीवन या नहीं है, या कि लापरवाही में जी रहे। बस इतना ही ध्यान आ जावे कि नहीं, बहुत व्यवस्थित, बहुत रेगुलेट मेरी लाइफ होनी चाहिए, वही मेरा शील और वही मेरा व्रत है। व्रत और शील करते क्या है, हमारी लाइफ को रेगुलेट करते हैं, हमारी हमारे अपने जीवन को एक सही दिशा देते हैं, हमारे जीवन में एक नियंत्रण आ जाता है, एक अनुशासन आ जाता है। और वो अनुशासन कई तरह से हम कर तो लेते हैं, वैसे भी तो हम बहुत अनुशासित हैं कई मामलों में, जहां हमारा स्वार्थ सत्ता है वहां हम अनुशासित हैं, बिल्कुल नियंत्रण कर लेते हैं हम अपने ऊपर, जरा भी अनियंत्रित नहीं होते जहां हमारा स्वार्थ सत्ता है। जहां हमारा काम बिगड़ता है वहां भी हम नियंत्रित हैं, वहां भी अपने को रोक लेते हैं। भैया विष कौन खाता है बताओ, कोई खाता है क्या, सबको मालूम है कि मर जाएंगे, तो बड़ा नियंत्रण है। अपन कह दे कि हमारा तो विष का त्याग है, आजीवन त्याग है, हम कितने बड़े त्यागी हैं, हैं? नहीं, ये इस तरह की नियंत्रण की बात, ये तो बहुत आसान है कि जिन चीजों से हमें सामने सामने अपनी क्षति होती दिखाई पड़ती है, उन चीजों का हम नियंत्रण कर लेते हैं, जिन चीजों से हमारा स्वार्थ सत्ता है उन पे हम नियंत्रण कर लेते हैं। लेकिन मेरा जिन कामों से आत्म कल्याण हो वो काम मुझे करना है, और जिसमें मेरे आत्मा का पतन हो वो नहीं करना है। शरीर भी मान्य पड़ जावे इसके लिए तो बहुत ध्यान रखते हैं, शरीर में चोटने लग जावे, गिरने पड़े हम, शरीर के पतित हो जाने की जितनी चिंता है उसमें आत्मा के पतित होने की चिंता जिस दिन हो जाए उस दिन आत्मनियंत्रण हो जाए। जितना मेरे इंद्रियों और मन को मैं संभाल के चलता हूं, किस वजह से कि ये ठीक काम करती रहे, उतना ही अगर मैं अपने आत्मा के परिणाम संभालने के लिए कि ये बिगड़ जाएंगे तो सब ही बिगड़ जाएगा। भैया आंख थोड़ी बहुत बिगड़ जावे, आंख में कमती रोशनी हो जावे तो कछु नहीं, कान कमती सुनने लगे तो कछु हर जा नहीं, लेकिन अगर चेतना ही लुप्त हो जावे तो फिर क्या रहा। अपन लोग कहते ना कि कैरेक्टर इज लॉस्ट सो एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारे अपने चेतना की निर्मलता खत्म हो गई, अगर वही मलिन हो गई, वही पतित हो गई, तो फिर क्या शेष रहा, बाकी सब चीजें हमने संभाली और हमारा अपना जो चेतना है, हमारा अपना जो आत्मा है, वही अगर पतित होता चला गया। आत्म पतन से बचने की प्रक्रिया का नाम ही शील और व्रत है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अनुशासन ऐसे करना अपने आत्म कल्याण के लिए। कोई कभी पूछता है हमसे, तो जब पूछता था कि काय तुम रात में नहीं खाते, त्याग है का तुम्हारा, हम कहते त्याग व्याग नहीं करते, हम हमारा इच्छा ही नहीं होती हमारी रात में खाने की, बात खत्म हो गई। जिस दिन इच्छा होगी उस दिन खा लोगे, हाँ जिस दिन इच्छा होगी उस दिन खा लेंगे, लेकिन अपने ऊपर विश्वास है कि अब इच्छा होने नहीं देंगे हम। ये हमारे ऊपर निर्भर करता कि इच्छा हम होने देंगे का, अपने आप से होते का इच्छा। भीतर को बैठे हुए जो हम धीरे से कह देते वो खा लो, ऐसा है क्या कोई? नहीं, हम ही इच्छा करते हैं और तो कोई नहीं करता। हमारे भीतर बैठे हम ही इस तरह की लालसा बस जो है इच्छाएं करते हैं और कहते हैं हमारा नियंत्रण नहीं होता अपनी इच्छाओं पर। नहीं, हम स्वयं एक बार तय कर ले में, और जब जब भी कोई इस तरह की चीज आए तो हम कह दें कि नहीं, हमारे अंदर इस तरह की अब इच्छा ही नहीं उठती। इच्छाओं को जीत लेना, व्रत नियम संयम के मायने ही ये है कि हमने अपनी इच्छाओं को बहुत हद तक, पूरी तरह से तो नहीं, बहुत हद तक अपने काबू में कर लिया है। और जो अपने को मुख्य बात समझनी है शील और व्रत के बारे में, तो अपन ने बहुत सारी बातें पहले भी समझी हैं, पर जो मुख्य बात समझनी की निरंती चाल, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, श्रद्धा गड़बड़ानी नहीं चाहिए व्रत नियम का पालन करते समय, ज्ञान गड़बड़ाना नहीं चाहिए, पूरे विवेक पूर्वक हमें अपने क्रियाओं को करना। विवेक के मायने क्या है? निराकुलता। हाँ, विवेक वही है जिसमें निराकुलता, अपनी शक्ति से अधिक भी नहीं और अपनी शक्ति को छिपाना भी नहीं, ये विवेक है। लिखा हुआ है कि व्रत पालन करने वाला स्वयं भी सुख का अनुभव करे और उसके आसपास के लोग भी सुख का अनुभव करें, उस व्रती के संपर्क में आने वाला भी सुख का अनुभव करे, तो समझना कि उसके वे व्रत अब वाकई में विवेक पूर्वक किए जा रहे हैं। और अगर हमारे अपने व्रतों से हमारे भीतर तो निराकुलता नहीं आ पाई, और बाहर भी जिसके भीतर निराकुलता आ गई, ध्यान रखना बाहर भी निराकुलता आए बिना नहीं रहेगी। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कठिन है? नहीं, हम जितने संतोष पूर्वक, एक उदाहरण ले लो चलो, तो हो सकता है कि जल्दी से समझ में आ जाए। कोई भी उदाहरण घर गृहस्थी का लेना चाहे तो अपन ले सकते, घर में माने किसी चीज का त्याग किया है, अब उसके त्याग का फल बाकी सब लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ, मां का वाकई त्याग है। जैसे मां ने त्याग कर दिया आलू का, और परिवार के लोग कह रहे हैं कि मैं तो आलू खाऊं, अब मैं उससे पूछना चाहता हूं वो मां घर के लोगों को आलू बना के खिलाएगी कि नहीं? हमारी मां ने हमको 20 साल तक आलू बना के खिलाए, लेकिन उन्होंने जिंदगी में एक भी दिन आलू की सब्जी नहीं खाई, बताइए आप। अब उनके त्याग का हमारे ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कि देखो तो इनका खुद का त्याग, बची रहे तो इतना ही कहती थी कि काय पूरी खा लो, बची है सो फिर कूख है, काम बारीक हूं देने पड़े कि गैया को डालने पड़े। अब तुमने जब पूरी नहीं खाई तो मां तुम खा लेना, अरे तुम अरे चिड़ाऊ तो हमें, हम कहां खा, तुमने देखो हम खाते कब, आपको अच्छी नहीं लगती होगी, अब अच्छी लगे चाहे बुराई हमने तो छोड़ दी, हम तो जब दूसरी पड़कते जब से छोड़ दी। अब बताओ आप इस त्याग का फर्क पड़े, दूसरे के सुख का पूरा ध्यान है और अपना त्याग भी निभरा है, कोई घर में क्लेश नहीं हो रहा उस चीज को लेकर के, कहीं कोई उनके त्याग से किसी को कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही कि अब इनको त्याग है सो हमें तक नहीं मिल रही बात चीज, नहीं आप आ रहा, आपको जैसा करना आप करो, हमें कोई वो नहीं है। भैया आज हमें जल्दी मंदिर जाना है, जल्दी मंदिर जाना तो हम क्या करें, तुम थोड़े जल्दी भोजन कर लियो तो हम जल्दी बनाए देते तुम्हारे लिए, फिर हम मंदिर चले जाएं। नहीं, हम तो अपने टाइम से ही करेंगे। अच्छा ठीक है, तो तुम अपने टाइम से ही करना भैया, हम बाद में हो आएंगे मंदिर, हम 11 बजे मंदिर हो आएंगे, 12 बजे भोजन कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुमसे हम ये नहीं कहेंगे, तुम पे हम अपना ये दबाव नहीं डालेंगे कि हम व्रती हैं, हम त्यागी हैं, हमारा ख्याल रखो करो तुम, हमें हम तो जी चले मंदिर हो तुम जाओ बिना खाए चले जाओ काले चले जाओ हमें वह कर, नहीं भैया ऐसा नहीं, तुम तो अपने हिसाब से, हम अपना कर लें। इससे क्या फर्क, इससे क्या मालूम पड़ता। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, घर गृहस्थी का उदाहरण दे रहा हूं, मैं त्यागी व्रती के त्याग की बात कर रहा हूं। ऐसे त्याग को निरतिचार त्याग कहते हैं। मैं तो अपनी अपनी परिभाषा यही बनाता हूं निरतिचार की। आपने 100 तंच किया होगा, अच्छा बिल्कुल निर्दोष, लेकिन निर्दोष तक कब आएगी जबकि दूसरे को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपके व्रत से, और आप स्वयं आनंदित हैं, स्वयं भी आनंदित है और दूसरा भी कह रहे हैं कि भाई अद्भुत है। बताइए आप, कोई अपन तो छोटी छोटी सी चीजें कर्म करना शुरू कर देते हैं और उसका इतना हवा बना लेते हैं कि भैया इनसे बड़ा कोई वो नहीं। त्यागी के अंदर जितनी विनय होगी उसका उतना त्याग निर्मल होगा, और त्यागी के अंदर जितनी कषाय की तीव्रता होगी उसका त्याग स्वयं का कल्याण भी नहीं करेगा, दूसरे का तो बिल्कुल नहीं बल्कि दूसरे का अहित ही करेगा। हाँ, ये ध्यान रख, इसलिए लिखना पड़ा कि निरतिचार पूरे विवेक के साथ में व्रत नियम का। आज व्रती व्यक्ति की इज्जत क्यों नहीं हो रही, हमें कई बार मन में आ जाता। अकेले ऊपर बिठार दैसे नहीं हो, इतने भीतर बैठो हो व्रती तो इज्जत है। अकेले तो ऊपर बिठारे से नहीं हो कि ऊपर बिठार दो सो इज्जत हो गई, जा इज्जत नहीं कहलाती। ऐसी तो चिपकुली बैठी ऊपर हो सका हो तो इज्जत दे रही था हमने चिपकुली को नहीं। त्यागी व्रती के प्रति हमारे मन में जितना वात्सल्य होना चाहिए, जितना प्रेम मरना चाहिए, देख करके जैसा मन गदगद हो जाना चाहिए, कब होगा? जब उसके जीवन में विनय आएगी, उसका सारा आचरण विवेक पूर्वक दिखाई पड़ेगा, जब उसका सारा आचरण जो है दूसरे के लिए सुखद मालूम पड़ेगा, तब जाकर के उसके प्रति हमारे, आज ज्ञानवान के प्रति भी हमारे मन में उतना उत्साह नहीं आता, क्योंकि उसका सारा ज्ञान भौतिक है, अपनों कल्याण कर रहा है, दूसरे को ज्ञान बता रहे, तो ऐसे ज्ञान का असर होगा क्या? ऐसी श्रद्धा, रोज तो मंदिर जा रहे और दुकान पे आने के लड़का को सिखा रहे कि वो मंदिर आए छोड़ो भूल जाओ इतने तो बेईमानी करो, तो वो कहे के काय को मंदिर, का मतलब वो मंदिर जावे, काय की श्रद्धा इनकी, सारी चीजें गड़बड़ा गई। श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, सारी चीजें कब गड़बड़ा जाती हैं? जब उनके साथ में जैसा है वैसा हमारे व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ता है। आज यही चीज है वर्णी जी के जीवन में, ये सब बातें होने की वजह से आज भी यहाँ के लोग शायद गणेश प्रसाद वर्णी से उतने प्रभावित नहीं है, ना उनको जानते हैं। हम तो बुंदेलखंड के हैं भैया, सपने तो एक एक बूंद में, एक एक रोम में वो संस्कार है, वर्णी जी का है। वर्णी जी जैन कुल में पैदा नहीं होने के बाद भी निरतिचार कैसे व्रतों का पालन किया जाए, दोष लग जाए तो छिपाना नहीं, तभी निरतिचार पालन होगा। अगर दोष मन में आ भी गया है तो सबके सामने उजागर कर दिया। एक व्रती व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूं, उन्हीं का, 7 प्रतिमा लिए हैं वर्णी जी और चौधरी चौधरन बाई के मंदिर से, और उठे सागर में चौधरन बाई को मंदिर कहा, वहां से उठे आहारों को, और आहार करके वापस आऊं लगे तो एक व्यक्ति इलाका ही थे वो समय, अब तो बड़े हो गए, तो वो सुनाते कि हम बचपन बच्चे थे, छोटे थे, तो हमने वर्णी जी से रास्ता में कही कि वर्णी जी हमारे तो आउते नहीं है आप भोजनों को, और तो सब जगह जाते, तो भैया कहां है तुम्हारा घर? देखो जा नहीं कही कि तुमने हमें बुलाओ कि नहीं बुलाओ, और कोई हो तो जा कहते कि हम बिना बुलाए नहीं आउता है, हम व्रती हैं, कहा है। बड़ा मान सम्मान चाहिए आज त्यागी व्रती को, भारी हम कह रहे आपसे, और कोई कहे सो अच्छी नहीं लग, हम कह रहे हां भारी चाहिए, थोड़ी कमती हो जावे तो भैया को पारो होते चढ़ जाए, को 110 से ऊपर थर्मामीटर फूट जाए, उन्हें 105 आउट, 110 से ज्यादा नहीं आउट, हमें बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। हम त्यागी व्रतियों को शिक्षा लेना चाहिए, हम उनकी इंसल्ट निंदा नहीं कर रहे, हम कह रहे कि क्यों ऐसा है, निंदा तो बिल्कुल नहीं, निंदा तो व्रती की करेंगे तो हम अपनी ही करेंगे, वो तो फिर हमारी कहलाएगी, निंदा का नहीं हमारी कमजोरी है, क्यों हम इस तरह से जो है कमजोर हो जाते हैं। तो क्या क्या वर्णी जी ने पूछा, जी नहीं कहा कि हमें बुलाओ नहीं है, कभी ये तुम्हारा घर कहाँ है? अरे वो तई तो है आश्रम जाऊ तो आप सुराम प्याऊ की कुलिया में से तो हमारा घर है। ए भैया तो भयाने मताई से कह लियो कड़ी बना ले होगा नहीं हो तो देखो त्यागी व्रति वो करके कोई और होता तो कहते तो कि जी काहे की त्यागी व्रति है कड़ी की कह रहे बताओ है ये तीलो लुकता है ऐसा कह देते। लेकिन उनकी सरलता देखो आप उस छोटे से लड़के से का कहें उसको का सिद्धांत बतावे का कहें उसके मन को समझाने को तो जय अब्बू बड़ा गदगद भक्ता चला जाता माँ से कहता कि बाबा जी से तो हमने कह दी बाबा जी कहते कि मताई से कह दियो भैया ने कड़ी बना ले आए भी हम लुआवे जे हैं उनको हाउ ठीक चले जाइयो भैया बना ले भैया ने सुमताई ने कड़ी बना ली और हो गया लग गया सब आहार के लिए व्यवस्था हो गई। बर्णी जी आ गए उस छोटे से लड़के के कहने से आ गए 10 साल का 8 साल का चलो सात प्रतिमाधारी थे अब चले गए और उनके यहां पर अब कह दई थी कड़ी निकल गई मुंह से वो लड़का से कह दई हंसवा भी गई थी उनने मगर वो सही निकल गई सो अब कड़ी उनने सामने रखवा ली। उस दिन ने नमक लिया ने बूरा लिया ने घी लिया छह रस नहीं लिए कड़ी धर दो और रोटी परस दो रूखी रोटी और दो ही चीजें खाके वो चले आए। लोगों ने कही कि काय बन्नी जी आज तो कछु नहीं कही कछु नहीं लाओ आपने कहने लगे भैया का करें वो लड़का मानत ने तो वो हमारे मुंह से निकल गई कि कड़ी बना लियो हमें ऐसी कहने नहीं थी सो फिर हमने प्राश्चित कर लो हमने सब रसों को त्याग कर लो मनो वो लड़का लगो तो हमने उनके भोजन करे बताओ इतनी सरलता। अगर थोड़ी उसके मन को पसंद करने के लिए ऐसा कह भी दिया तो खुद प्राश्चित कर लिया लेकिन किसी को ये नहीं भर ये नहीं कहा कि हम तो त्यागी व्रति हैं और हम तो जो है इस तरह करेंगे हम तो ऐसा करें। इस त्याग का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उस छोटे से बच्चे पर भी पड़ेगा वो भी समझता है कि देखो वर्णी जी ने अपने लाने कड़ी की कह दी थी जा अच्छी बात नहीं है सोन ने बाकी सब चीजें छोड़ दी वो तो हमारे वजह से जो है उन्होंने इतनी विनय से ले भैया हमारा कहने का भाव इतना ही है कि व्रत नियम निरतिचार पालन करने का अर्थ है पूरी श्रद्धा से कषायों की मंदता के साथ विवेक पूर्वक जिससे स्वयं को भी आनंद आए और अपने आसपास भी किसी को कोई कि अब भैया इनके इनके इतने नियम हैं कि सामने वारो ही बिल्कुल ऐसे हड़बड़ा रहो कि का करें हम वो की जान सांसत में और पड़ गई इनके नियम निभाएं कि वो अपनों अपनी जान संभारे। हाँ किसी के लिए विशेष वो नहीं कह रहे ये अपने हमारे भी नियम है सप्त व्यसन का त्याग है जिसका उससे ही लेंगे जी तो हमने पहले ही से उजागर कर दिया ऐसा नहीं इसका अर्थ ऐसा नहीं ले लेना नहीं तो आप ये कहो कि चाहे जो कोई आवे और चाहे जो कोई दे देवे ऐसा कह रहे महाराज जी महाराज तो सबको छूटा दे रहे वैसा नहीं कह रहे भैया जो जो कायदे हैं जो नियम है जो मर्यादा है वह मर्यादा तो बनी रहेगी लेकिन अपनी मर्यादा में रह करके और दूसरे को भी जो है धर्म ध्यान करवाना ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ऐसा नहीं कि दूसरे का धर्म ध्यान ही ना हो और हम जो है कहें कि हम तो अपना धर्म ध्यान अपने तरह से करते चले जा रहे हैं ऐसा नहीं। जो भी त्याग जो भी व्रत नियम ले वो हमेशा अपने आसपास अपने परिवेश का भी अपने परिवारजनों का अपने समाज का सबका ख्याल रखे। मेरे ख्याल से तो अपने व्रतों को अच्छे से पालन करेगा तो दूसरे का ख्याल न भी रखे तो सबका ख्याल रखना ही हो जाएगा। जो स्वयं निर्दोष पालन करेगा उसका असर सबके ऊपर पड़ेगा। एक भैया मुझे फिर वही कहना है कि व्रति व्यक्ति के व्यवहार से अव्रति व्यक्ति भी अपने जीवन को और संयमी बना लेता है इसलिए संयमी व्यक्ति को अपने जीवन को इस तरह बनाना चाहिए जिससे उसके संयम का असर जिसके उसके उसके शील और व्रत का असर सब दूर पड़े सबके भीतर एक ललक हो। ऐसी अगर प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना से किया गया व्रत और नियम है तो अवश्य वो हमें तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त बनेगा। इसी भावना के साथ कि हमारे जीवन में ये सब भली बातें आवे बोली आचार्य विवर विद्या सागर जी महाराज की भैया।
करने